ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रगति मैदान कॉरिडोर के अधूरे अंडरपास का निर्माण कार्य मॉनसून के बाद शुरू होगा। केंद्र सरकार से जल्द अनुमोदन की संभावना। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम की समस्याओं को लेकर बैठक की। अधिकारियों को अनियमितताओं और प्रदूषित पानी की शिकायतों को दूर करने के निर्देश दिए। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव आया नगर में जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। दिल्ली के शास्त्री पार्क क्षेत्र से मादक पदार्थ की तस्करी वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। और नई दिल्ली पालिका परिषद ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि प्रगति मैदान कॉरिडोर के अधूरे अंडरपास का निर्माण कार्य मॉनसून के बाद शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से इस कार्य के लिए जल्द ही अनुमोदन मिलने की संभावना है। यह अंडरपास भैरव मार्ग से रिंग रोड को जोड़ने वाला अंडरपास 5 है। श्री सिंह ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी तकनीकी मूल्यांकन पूरे कर लिए हैं और केंद्र को अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे स्वीकृति मिलती है, दिल्ली सरकार मॉनसून के बाद काम शुरू कर देगी। यह अंडरपास प्रगति मैदान क्षेत्र में यातायात को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने आज करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम की समस्याओं को लेकर जल बोर्ड के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान करावल नगर विधानसभा में पानी की नई पाइपलाइन बिछाने, पेयजल आपूर्ति की अनियमितताओं और प्रदूषित पानी की शिकायतों को दूर करने के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए। विकास मंत्री ने अधिकारियों को बताया कि करावल नगर क्षेत्र की आबादी लगभग 5 लाख है और यहां पर पानी की मांग लगभग 25 MGD है। उन्होंने मौजूदा पानी की आपूर्ति बढ़ाने की भी बात कही। श्री मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दक्षिण दिल्ली से भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधोड़ी ने कहा है कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव आया नगर में जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि में से 5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन आज रामवीर सिंह बिधोड़ी और छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर ने किया। इस अवसर पर श्री बिधोड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी छतरपुर में छात्राओं के लिए कॉलेज खोला जाए। इसके अलावा जौनापुर में सिंगापुर की मदद से बनने वाला विश्व स्तरीय कौशल विश्वविद्यालय का काम भी जल्द ही शुरू होने की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे यमुना क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अवैध खनन के चलते यमुना के तटबंध कमजोर हो रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा भी पैदा होता है। पत्र में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की चिंताओं से भी श्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर संसद की समस्त कार्यवाहियों में वास्तविक समय पर सांकेतिक भाषा में व्याख्या की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि ये प्रस्ताव उन नागरिकों के लिए संसदीय प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से सुलभ बनाने के उद्देश्य से रखा गया है जो श्रवण संबंधित अक्षमता से पीड़ित हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। मादक पदार्थ की आपूर्ति में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार भी पुलिस ने जब्त की है। दिल्ली अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त संजीव यादव ने बताया है कि इस गिरोह का संचालन उत्तर प्रदेश के बदायूं से किया जा रहा है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज मध्य दिल्ली जिले में नशा मुक्ति अभियान की प्रगति और रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। श्री इंद्राज ने कहा कि नशा मुक्त दिल्ली का सपना तभी साकार होगा जब सभी विभाग, संस्थान और समाज आपसी समन्वय बनाकर इस दिशा में प्रयास करेंगे। बैठक में समाज कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य दिल्ली के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएं, स्कूलों, कॉलेजों और शेल्टर होम्स में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने पुलिस, समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पुनर्वास सेवाओं पर जोर देने के लिए भी कहा ताकि नशे की गिरफ्त से बाहर आने वाले नशे से दूर रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को और बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में आज नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। श्री सिंह ने कहा कि विदेशों से आयात किए जाने वाले अधिकांश रक्षा उपकरण अब देश में ही बनाए जा रहे हैं।
हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है।
रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आर्थिकी के महत्व पर जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित लगभग सभी प्रमुख देश अपने रक्षा व्यय में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप आगे कदम बढ़ाएं और उसके पीछे कारण यही था, आज भारत सहित पूरा विश्व डी आर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 300 बिलियन जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि देश की जैव प्रौद्योगिकी व्यवस्था ने एक दशक में तेजी से प्रगति की है और 50 स्टार्टअप से बढ़कर अब लगभग 11,000 हो गए हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों को आसानी से उनकी रुचि के विषयों का अध्ययन करने में सहायता करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उर्वरक असली है या नकली, इसकी जांच वैज्ञानिक तकनीकों और उपकरणों से होनी चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक आम बैठक में श्री चौहान ने कृषि क्षेत्र में नवाचार, सतत विकास और किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब से अनुसंधान केवल प्रयोगशाला से ही नहीं बल्कि किसान के खेत से भी होगा। श्री चौहान ने देश में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मक्का का उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है।
बंगाल में, बिहार में प्रोडक्टिविटी अब एवरेज से ज्यादा है, ओवरऑल अभी और बढ़ाने की जरूरत है। हमको ICAR को धन्यवाद भी देना चाहिए कि मक्का की 265 अलग अलग वेराइटीज विकसित की है और उनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी है जिसमें स्पेशलिटी कॉर्न भी शामिल है और लगभग 30 बायोफोर्टिफाइड भी है।
आगामी जनगणना के दौरान स्वगणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पोर्टल जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा।
सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के महापंजीक और जनगणना आयुक्त ने कहा कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। प्रगणक और पर्यवेक्षक डेटा संग्रह के लिए अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करेंगे। जनगणना 2027 के लिए राजपत्र अधिसूचना पिछले महीने जारी की गई थी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य राजपत्र में इसकी अधिसूचना पुनः प्रकाशित करने और जनगणना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में आवास सूचीकरण और आवास गणना अप्रैल 2026 से शुरू होगी जबकि दूसरे चरण में जनगणना की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु की रिपोर्ट के साथ जया भारती।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली पालिका परिषद NTMC ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर में 7,000 से अधिक पेड़ और 35,00,000 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
NTMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। श्री चहल ने आगे बताया कि NTMC ने इस वर्ष गैप फिलिंग अभियान शुरू किया है ताकि सड़कों और चौराहों के किनारे लगातार हरियाली बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत करीब 80 सड़कों को शामिल किया गया है। अभियान का मकसद प्रदूषण को कम करना है। श्री चहल ने यह भी जानकारी दी कि NTMC द्वारा दिल्ली के बापूधाम, नेहरू पार्क, अकबर रोड, एम्स जैसे इलाकों में 9 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाएंगे। साथ ही छतों पर बागवानी और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाली तीज के अवसर पर 27 जुलाई को एक विशेष वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन कल दिल्ली भाजपा द्वारा राजधानी के कमानी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी उपस्थित रहेंगे।
इस संबंध में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा का हर कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का अनुसरण करता है और भाजपा विचार आधारित पार्टी है। इसीलिए उन विचारों को जन जन पहुँचाने के लिए पिछले एक महीने से दिल्ली भाजपा द्वारा नाटक के मंचन की तैयारी की जा रही है। श्री सचदेवा ने बताया कि कल शाम 4 बजे मंचित होने वाले इस नाटक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े पहलू देखने को मिलेंगे, जिसमें बाल्यावस्था में उनका स्वभाव, कॉलेज जीवन से लेकर युवा कुलपति बनने तक का सफर, राजनीतिक प्रवेश से लेकर देश की एकता के लिए नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और फिर जम्मू कश्मीर यात्रा और शेख अब्दुल्ला से मिलना शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की डिजिटल क्रांति, सेवाओं में सुधार और सरलीकरण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से भविष्य निधि से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112342105 और 0112331444। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि दोपहर में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रगति मैदान कॉरिडोर के अधूरे अंडरपास का निर्माण कार्य मॉनसून के बाद शुरू होगा, केंद्र सरकार से जल्द अनुमोदन की संभावना। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति और सीवेज सिस्टम की समस्याओं को लेकर बैठक की। अधिकारियों को अनियमितताओं और प्रदूषित पानी की शिकायतों को दूर करने के निर्देश दिए। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव आया नगर में जल्दी विकास कार्य शुरू होंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। दिल्ली के शास्त्री पार्क क्षेत्र से मादक पदार्थ की तस्करी वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार और नई दिल्ली पालिका परिषद ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।